आइए देखते हैं कि कुरान पाक की आयतों में कहाँ कहाँ ये नाम आया। याद रखिए, 5 दफा ये नाम टोटल आया, जिनमें से 4 जगह गफूर के लफ्ज के साथ है। ठीक है, मसलन अफूवन गफूरा, अफूवन गफूरा, ठीक है, और एक जगह सिर्फ कदीरन के साथ आया, यानी अफूवन कदीरा। या तो ले लीजिए, आप नंबर सिर्फ नोट कर लीजिए, ताकि बाद में जब आप कहीं भी किसी को बताएं तो कम से कम आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हों। पहली आयत अलफ के इस नाम के बारे में जो कुरान पाक में आपको आती है, सूरत नूर। वाक्य से आप समझ जाएंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक और मस्तों का वाक्य 22 है। वला या तली उलुल फतली मिनकुम, इस कैंड पे क्या था, वल्लाहु गफूर रहीम। मिडल में देखिए क्या अल्लाह फरमाते हैं, वल याफ वल यस्फहु अला तुहिब्बुना यग़फिरुल्लाहु लकुम। याद रखिए, वाकिफ के मौके पे अबू बकर ने कसम खा ली थी, क्या वो मस्तों की किफालत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया इसने और ये खुद ही उनकी किफालत करते थे। उस पर जब ये आयत उतर गई तो अबू बकर सिद्दीक ने सुना, कहा अल्लाह ने क्या पूछा था, अला तुहिब्बुना यग़फिरुल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। तो उस पर अबू बकर ने कहा था, क्यों नहीं अल्लाह, हम चाहते हैं कि तू हमें माफ़ कर दे। और ना सिर्फ यह कि मस्तों को माफ़ किया, बल्कि दोबारा उनकी किफालत जारी कर दी। फिर इस तरह सूरत हज की आयत 60 है, ज़ालिक वमन आक़ब बिमिस्ली मा उक़िब बिही सुम्मा बुगी अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाह लअफुवुन गफूर। बात चाहिए कि जिसने बदला लिया, फिर इसी के बराबर जो इसके साथ किया गया था, फिर अगर इससे ज्यादती की जाए तो यकीनन खुद अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, बेशक वो दरगुजर करने वाला और बख्शने वाला। यानी जब आप अपने बदले नहीं लेते ना, तो अलफूफ आपके बदले लेता है। वो वाक्या भी याद कर लें, अगर यहाँ किसी को याद है कि अबू बकर सिद्दीक को एक शख्स बुरा भला कह रहा था और अबू बकर मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह के नबी भी आगे देख रहे, इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब आपका पारा लबरेज हुआ, तो उसके जवाब में अबू बकर भी कुछ बोलने लगे, तो अल्लाह के नबी चले गए, चेहरे पे नागवारी थी। तो फिर उस पे अबू बकर को तो ईमान की फिक्र पड़ गई, भूल गए सब, पीछे गए, अल्लाह के नबी ये क्या, आपके दोस्त को जब वो बुरा कह रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, मैं बोला तो आप उठ गए। कहा अबू बकर, जब वो तुझे बुरा कह रहा था तो मैंने देखा आसमान से एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा जो तेरी जगह उसको गाली दे रहा था, और जब तू बोला तो फरिश्ते की जगह शैतान आ गया। फिर ज्यादती हो जाती है जब दोनों ही बोलने लगे। लिख लीजिए आपके मेरे लिए अमल का नुक्ता, के दो लोग एक वक्त ना बोले। अगर मियाँ को गुस्सा आ गया तो चुप कर जाइए, और अगर आज बीवी का बोलने का शौक है तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, दोनों का ही फायदा होगा इंशाल्लाह। देखिए, छुरी एक होती है, कैंची दो छुरियाँ होती हैं, जो काम कैंची करती है वो छुरी नहीं करती, तो कैंचियाँ ना बने। फिर इसके बाद अगली आयत देखिए, सूरत निसा की आयत 99 है, असल्लाहु याफ़ू अन्हुम वकान अल्लाहु अफूवन गफूरा। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह इनसे दरगुजर करे, अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ़ फरमाने आला। फिर अगली आयत इस नाम से मुतल्लिक सूरत निसा ही की 149 है, इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना अफूवन कदीरा। छठे पारे की शायद दूसरी आयत बनेगी ये मेरे गुमान में, कि अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा करो या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह माफ़ी कर देने वाला पूरी कुदरत वाला है। और इसी तरह फिर सूरह शूरा की आयत नंबर 25, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता इबादिही व याफ़ू अनिस्सय्यिआति व यालमु मा तफ़अलून। वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब जानता है। हम तो दूसरे को कभी ना माफ़ करें, तो वो जो दिन रात हमें गुनाह करता देख कर माफ़ करता जा रहा है, क्या उसका मुकाम हमने पहचाना। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह तआला का ये नाम हमें भी इस बात की दावत देता है कि हम भी दूसरों को माफ़ कर दें, और जितना आप अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी इज्जत भी बढ़ाएंगे, आपको तसल्लियाँ भी देंगे, और आपके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही आसानियों के मामले होंगे। और वो जब भी मैं आयत बताना चाह रही थी ना, कि अगर अल्लाह दुनिया में, जैसे मैंने ऊपर आम तरह के अफ में ये बात बताई थी, आयत का रेफरेंस देना चाह रही हूँ, बेसिकली ले लीजिए, काम आएगा कभी, सूरह नहल आयत 61। इसमें अल्लाह ताला के अफवे आम की मिसाल है, वलो युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाबतिन। और अगर अल्लाह लोगों को इनके जुल्म से पकड़ ले, यानी इनके हर जुल्म पर पकड़ ले, तो ज़मीन पे किसी चलने वाले को न छोड़े, लेकिन अल्लाह एक मुकर्रर वक्त के लिए ढील देता है, और जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर आगे पीछे नहीं होगा। तो याद रखिए, ये अल्लाह का हिल्म है, इसकी हिकमत और मसलियत का तकाजा है। वो अपनी नाफरमानियां देखता है, फिर भी नेमते सल्ब नहीं करता, फौरी पकड़ नहीं करता, हालांकि वो एक सेकंड में पकड़ सकता है, लेकिन वो नहीं पकड़ता। आप भी लोगों को गलत काम करने दिया करें, एक दफा अपना नुकसान करेंगे, अगली दफा ठीक हो जाएंगे। तो लोगों को माफ करना सीखिए, अल्लाह के लिए, लोगों के लिए दिलों में नरमी रखिए। दोस्तों को, मासियों को, मुलाजमों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को ऐसे माफ कीजिए जैसे अल्लाह आपको माफ करता है। लोगों के उज़र कबूल कीजिए। जो भी इसका एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला उसको पसंद करेगा। अल्लाह के नबी ने इसको बहुत पसंद किया, और जो माफ करेगा, इस नाम की बरकतें जिंदगी में आएंगी। देखिए, ये गिल्ट अपने दिल दिमाग में लेके मत जिए, ये वो चीजें हैं जिससे आपको फायदा होगा। हमारे नबी का तो आम तुर्रई माफी का था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। कैसे फतेह मक्का के मौके पे 21 साल से सताने वाले लोग सामने खड़े थे मुजरिम बन के, लेकिन क्या कहा, आज सब के लिए माफी है। जरूरत है इस बात की कि हम इस पे गौर व फिक्र करें, और दुआ में इंशाल्लाह हम एक दुआ सीखेंगे जो इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक आदमी को बताई थी, कि जब रात सोने लगो तो वो दुआ करो कि अल्लामा खलकता नफसी वंता तवफाहा, उसके बीच में आता अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल आफिया। तो अल्लाह ताला से आफियत मांगिए, बड़ा दर्जा है। जितना ज्यादा आप दूसरों को माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ करेगा। अबू कबशा से रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं कसम खाकर बयान करता हूँ, और उन तीन में से एक क्या है, कि जिस किसी बंदे पर कोई जुल्म करे फिर वो सब्र कर ले तो अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। अल्लाह करे हम ऐसे हो। तो अलफ के मानी तर्क करने और छोड़ने के भी है, और जब आप इसको खाली नकरा में लेते ना, आइन फा वो, तो बहुत ही छोड़ने वाला, बहुत ही माफ करने वाला। और जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बरकतें चाहते हैं, उतना आपको अल्लाह ताला के इस नाम के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये ऐसा नाम है कि जिसके समझने के बाद हमारे अमल दुरुस्त होंगे। एक होता है सफ़ुन, वस्फ़ सफ़ुन जमीला, सफ़ा कहते हैं हथेली को, सफ़ा पलट दो, ये सफ़ा लफ्ज़ भी इसी से है, पेज पेपर पलट दो। आज भी लोग कहते हैं वर्का फाड़ दो, ये एक मुहावरा है, छोड़ दो बस पिछला हिसाब साफ। तो ये बलीग लफ्ज़ हैं, अल्लाह के मुआफ़ी के लफ्ज़ों में बड़ी खूबसूरती है, और ख़ास तौर पर जब फाफू के बाद वस्फ़हू आ जाए तो इसका मतलब तो पता क्या बन जाता है। आप देखिए, वाफू वस्फ़हू किधर है कुरान में, अभी आपके सामने जो चीज़ें रख रही हूँ इनको आप सिर्फ सुन भी लेना तो बाद में समझ आ जाएंगी। सूरह बकरा की आयत 109 है, अल्लाह ने पीछे से तस्करे किए बनी इसराइल के किस्सों में, का फाफू वस्फ़हू, जाने दो। तो जब कभी वाफू के बाद वस्फ़हू भी आ जाए तो पता क्या है, ना सिर्फ ये कि माफ़ कर दो, बल्कि इससे भी आगे कदम बढ़ाओ कि बिल्कुल भूल भी जाओ, और आज के बाद दोबारा कभी किसी महफिल में बैठ के पिछली बातें ना दोहराना, गोया कि जुर्म हुआ ही नहीं। अल्लाह ने नबी को क्या कहा था, फसफ़ सफ़ जमील, बड़ी खूबसूरती से दरगुजर कीजिए। सूरह हिजर की आयत होगी यकीनन, आयत 85 सूरह हिजर है। तो क्या पता चला, जिंदगी को आसान कीजिए, लोगों को परेशान ना कीजिए। जितना आप माफ़ करेंगे अल्लाह आपको उतना माफ़ करेगा, और अगर आप नहीं माफ़ करते तो अल्लाह क्यों करे। कितनी हैरत की बात है, बंदा अल्लाह से वही चीज़ें मांगता रहता है जो दूसरों को खुद नहीं देता। कहते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन थे, बड़े नेक शख्स गुजरे हैं, तो उनकी लौंडी जो थी वो वुजू करा रही थी, लोटा उसके हाथ से गिरा जिससे इनका चेहरा जख्मी हो गया। उसकी तरफ गुस्से से देखा तो उस औरत ने आगे से क्या कहा, वल काज़िमीन अल गैस, उन्होंने गुस्सा जब्त कर लिया, कहने लगी वल आफ़ीन आनिन नास, कहने लगे मैंने तुझे माफ़ किया। वो भी लौंडी बड़ी पढ़ी लिखी थी, हम जैसों को तो पता भी नहीं होगा कि ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 134 है। तो कहने लगी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो कहा जा तू फिर अल्लाह के लिए आज़ाद है। क्या खूबसूरत मुकाम था, अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के दिन कैसे अपने खून के प्यासों के लिए अफवे आम किया। हुदैबिया में देखिए, आपने उन तकरीबन 80 लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें तैयार की थी। कैसे वो औरत जिसने आप पे जादू किया था, यहूदी औरत थी, आपने उसको कुछ नहीं कहा, उसने खाने में जहर मिला दिया, आप उसकी तकलीफ को महसूस करते थे लेकिन माफ़ किया। और अहादीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, जहाँ भी हाथ उठा या तलवार उठी तो ये अल्लाह के दीन के दिफा के लिए उठी। अहले अरब में अमीर मुआविया और अहनफ बिन कैस माफ़ करने और दरगुजर करने में बड़े मशहूर थे, लिख लें ये जुमला, यानी लोग कहते थे बहुत जल्दी माफ़ करते हैं, अमीर मुआविया और अहनफ बिन कैस। एक दौर ऐसा गुजरा कि अहनफ के सामने उनके बेटे के कातिल को लोग पकड़ लाए, तो कहा इसे छोड़ दो, इसे तकलीफ हो रही है। जी ये होते हैं जो अल्लाह के नाम को सुनकर दुश्मनों को भी माफ करते हैं। बादशाहों के हौसले बड़े बुलंद होते हैं। तारीख में ऐसी मिसालें हैं, बादशाह ने बड़े बड़े सरकश बाकियों को जो कई साल से सरकशियां कर रहे थे काबू पाने पे माफ कर दिया। तो अल्लाह अलफ क्या वो माफ नहीं कर सकता, कोई शक भी ना करे। और खास पे जब कोई गिल्टी कर दे, मुजरिम माफी मांग ले, तो नेक लोग साले लोग उसको माफ करना अपना फर्ज समझ लेते हैं। अगर आप अबू बकर क्या मस्तों को माफ करना और उस सारी बात को सुनकर भी अपने खानदान के छोटे छोटे झगड़ों में लोगों को नहीं माफ करेंगे, तो कैसे कल अल्लाह ताला को फिर कह सकेंगे कि हाँ अल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बु अन यग़फिर अल्लाहु ली, कि अल्लाह मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दें, तो यहाँ बैठे बैठे जरा सा माफ कीजिए किसी को जिसके बारे में सोचे। और बुखारी की रिवायत इब्ने उमर से कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो रिश्तेदारों के सिर्फ एहसान का बदला दे, बल्कि असल वो है जो रिश्तेदारों के ताल्लुक तोड़ने के बावजूद ताल्लुक जोड़े। तो याद रखिए, शफकत रखिए, मुआफी कीजिए सबको, इजी गोइंग, प्लीज बी इजी गोइंग, रिलैक्स्ड। डिसिप्लिन के लिए कुछ आपको रोक डालना पड़े ये और बात है, लोगों को सिखाने के लिए बाद में ये करेंगे वो होगा इनका नुकसान ना ये और बात है। अमूमी तौर पे अपने मिजाज में नरमी रखिए, बड़ा प्यारा अमल है नरमी। और जितना अल्लाह बंदे को नरमी देता है ना, वो कहता है जाने दो ना, मिट्टी पाओ जान दो, खुजे लफ अवामर बिल उर्फ वार एदन इल जाहिलीन। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा इसका मतलब क्या है, तो जिब्राइल ने क्या कहा, इन अल्लाह अमरका अन तअफ़ुवा अम्मन ज़लमका, अल्लाह के नबी अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप पर जो शख्स जुल्म करे इसको माफ़ कर दें। वह तो थी मन हरम का, और उसको दीजिए जो आपको ना दे, यानी जो आपको महरूम करे आप उसको अता करें। वह तसीला मन कतात, और उससे रिश्ते जोड़िए जो आपसे रिश्ते काटे। और याद रखिए ये वो चीज़ें हैं जो करने से फ़ायदा होता है। और याद रखिए कि माफ़ी करने की ज़रूरत भी पड़ी है, इंसान इंसानों में रहता है, मिलजुल कर रहता है, ये कैसे हो सकता है कि एक दूसरे का दिल ना टूटे। हमारे कल्चर में क्या कहते हैं, दो बर्तन हो तो छनक ही जाते हैं, ताली बजी जाती है। तो मेलजोल वाला बंदा तन्हा नहीं रह सकता, जो मिलजुल कर रहेगा अपनों से गैरों से तकलीफ तो मिलेंगी। और हदीस है कि जो बंदा दूसरों में घुल मिल करे और उनकी तकलीफों पे सब्र करे वो उससे ज्यादा दर्जा रखता है जो अकेला रहे। हम जंगल में जाके बैठ जाए हमें कौन छेड़ेगा, कुछ मक्खियाँ कुछ मच्छर कुछ शेर आएगा ना, बंदा नहीं आएगा आपके पास। तो लिखिए वो बंदा बड़ा ही महरूम है, हदीस में आता है जिसको लोग उसकी बुराई की वजह से छोड़ दें कि ना इसके मुंह ना लगो। तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा मामला कीजिए, नरमी का मामला कीजिए, अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात याद रखिए, जब कादिर हों फिर छोड़ दें। हजरत मूसा ने एक बार अल्लाह से पूछा था कि आपके बंदों में सबसे ज्यादा अजीज कौन है, आपको का जो कुदरत रखते हुए बख्श दे। तो फिर बात क्या है कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखिए, मायूस ना हो, क्योंकि गुनाह का गिल्ट इतना बड़ा होता है। इंशाल्लाह थोड़ा सा अगले नामों में भी कुछ चीज़ें कोट करूंगी, आज चूंकि ये मौजू पहली दफ़ा आया है तो मैंने सोचा कि इसको एक अच्छे अंदाज से बस समअप कर लेते हैं, लेकिन ये नाम आगे भी आएंगे तो हम देखेंगे कि गुनाह का गिल्ट कैसे मिटाया जाए। तो हमें इंशाल्लाह से अच्छा गुमान रखिए कि अल्लाह मेरे से अच्छा मामला ही करेगा। माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्रों को छोड़िए, आज लीजिए। वो बंदा जो आज खुश है, जो अल्लाह के साथ बंदों के साथ खुश है, नरमी है, बंदों से भी सॉरी कह लीजिए, आई एम सॉरी। आज हमें कितना मुश्किल लगता है आई एम सॉरी कहना, कहिए ताकि अल्लाह से भी कहना आसान हो। और याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे भारी होगी। अल्लाह क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों को माफ़ करेगा। आपने मैंने इंशाल्लाह कहीं ना कहीं निकल जाना, शर्त जो है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अच्छा रखिए और निडर ना हो, गुनाह करके अकड़े ना। और जितना अल्लाह से प्यार करते जाएंगे मस्कीन शक्ल बन के खड़े हो जाएंगे। बच्चा भी गलत काम करके आके माँ के सामने ऐसे मुंह करके नीचे भीगी बिल्ली बनता है, गुस्सा क्या आना है, माँ तो उसको गले से लगा लेती है, चिपका लेती है। तो अल्लाह की ज़ात कैसी बड़ी है, वो क्यों ना करे। और याद रखिए कि बुखारी और मुस्लिम में एक वाक्य भी आता है, एक शख्स का बहुत माल था, बहुत दौलत थी, औलाद भी बहुत थी, अल्लाह ने इतना दिया उसको जवान बेटे दिए, लेकिन इसके बावजूद वो मुसरिफ था, नेकियों से भागने लगा था, सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, कोई नेकी का काम ना किया। जब ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब आई तो उसको ख्याल आया कि मैंने तो इतनी नाफरमानियाँ की हैं, अब तो अल्लाह मुझे खूब पकड़ेंगे, दहशत तारी होगी, सब भूल गया। बेटों को पास बुला के कहता है, देखो मैंने तो अल्लाह के दरबार में अपने लिए कोई नेकी का ज़खीरा ही नहीं बनाया, मुझे डर लग रहा है कि अगर उसने मुझे आज पकड़ लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा किसी को नहीं दिया, तो लिहाजा तुम मेरी लाश को जला देना, मेरी राख को पानी में बहा देना। उसके दो हिस्से करना, आधे खुशकी पे बखेर दो आधे समंदर में, ताकि वो मिल ही ना सके। ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो फिर तुम मेरे विरसे में हिस्सेदार नहीं बनोगे। ये बुखारी मुस्लिम से पढ़ के बता रही हैं आपको। खैर, बेटों ने बाप की वसीयत पे अमल किया, लाश को आग लगाई, आधी राख बहा दी और आधी को उड़ा दिया। अल्लाह ने खुशकी को हुक्म दिया लेके आ वापस, और पानियों को हुक्म दिया लेके आ, जिंदा करके खड़ा कर दिया। तूने क्या किया ये बंदे? कहा, अल्लाह मैंने ये वसीयत आपके खौफ और डर से की थी। वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान। अल्लाह ने कहा, अच्छा वाकई मेरे डर से? जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये है अलफ। आप लोगों को कभी मायूस ना करें और खुद भी ना करें, क्योंकि गुनाह के बाद बंदा हमेशा मायूस होता है। शैतान पहले गुनाह कराता है, कोई नहीं रहमत हो जानी हो जानी, जब कर लो फिर कहते इतने गुनाह करके लो 900 चूहे खा के पता नहीं कौन कहाँ गया। तो याद रखिए, इबरत और नसीहत की बातें लीजिए। अल्लाह का खौफ बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी बुलंद चीज़ है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा हो गई ना, तो ये इसे गुनाह और नाफरमानी से बचाने में बहुत मददगार होगा। तो लिहाजा अपनी ख्वाहिशात से छुटकारा पाइए। वमन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। सूरत नाजियात की आयत 40-41 में अल्लाह ने बताया, नफ्स पे काबू पाए, यानी इबरत की बात यह है कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कीजिए। और वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतन, सूरत अर्रहमान को याद करें, दो जन्नतें मिलेंगी अल्लाह का खौफ लेंगे। दूसरी बात क्या है कि किसी बंदे को जिसने आपके साथ कोई ज्यादती की हो, अल्लाह के इस नाम को सुनने के बाद माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह कभी किसी आदमी के ना जानने की वजह से इसका उज़र कबूल फरमा लेते हैं। तो गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, इट्स ओके, जाने दीजिए। और याद रखिए कि जब अल्लाह की निगाह मग़फ़रत और रहमत पड़ जाए तो बड़े बड़े गुनाहगार बख्शे जाते हैं। एक वाक़िया है, मुबर्रद अरबी डिक्शनरी के भी और अरब बुक्स के बहुत बड़े राइटर थे, उनकी एक बुक है अल कामिल। कहते हैं कि एक मरतबा एक जनाजे में हसन बसरी, जो अपने दौर के एक बहुत बड़े ताबईन में से थे, कहते हैं ये भी थे और वहाँ एक शायर भी था जिसको फर्जदक कहते हैं। खैर, सारी बात का एंड बता देती हूँ। वो बुरी सोहबत रखता था और हसन बसरी की बहुत ही बड़ी शान थी। तो लोग कहने लगे, देखो आज के जनाजे में एक बेहतरीन शख्स खड़ा है और एक बदतरीन है। बेहतरीन से मुराद हजरत हसन भी थे। उन्होंने कहा, देखो ना तो मैं बेहतरीन और ना तुम बदतरीन हो, ये बताओ तुमने इस दिन के लिए तैयारी क्या की है जिधर ये मरने वाला जा रहा है? कोई इसका ज्यादा सफर है? तो वो जो हमारे बड़े थे ना, वो इस तरह लोगों के दिल नरम करते थे। तो याद रखिए, एक तोशा उम्मीद करम ले के चला हूँ, कुछ इसके सिवा नहीं ज्यादा सफर। और कभी किसी नमाजी किसी कलमा गो को हकीर मत जानिए, क्योंकि क्या पता अल्लाह उसके गुनाह की नदामत को कबूल कर ले और आपकी नेकियों के तकब्बुर को पकड़ ले। फिर आप देखिए कि ये नाम अहदीस में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें मिलता है, यानी ये नाम या इस नाम की सिफात कैसे अल्लाह के नबी से मिलती हैं। पहली हदीस जो आपके सामने है वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और यह हकीकत है कि मैं सारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं बख्श दूंगा। मुझसे मग़फ़रत तलब करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मांग लीजिए, अभी मांग लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। और बाकी दिन रात गुनाह करते हैं, चले अपना एक दिन का गुनाह को याद करें, चलिए अब एक रात का कोई गुनाह याद करें और कही अल्लाह मुझे इन दोनों गुनाहों के वबाल से बचा ले। जिस तरह आपने एक मौके पर फरमाया, जो रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता, जो माफ़ नहीं करता अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। खुद से पूछिए, क्या मैं रहम करती हूँ? मासी पे रहम करती हूँ? एक प्लेट उसकी टूट जाए मैं कहती हूँ तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूँगी, छुट्टी कर ले हम उसके पैसे काटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। माफ़ कीजिए, आज यहाँ बैठकर सारी मासियों को माफ़ कीजिए। फिर इसी तरह एक रिवायत है, आपने फरमाया, जब कोई जमात इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र करती है, लोग इकट्ठे बैठ कर अल्लाह को याद करते हैं और सिर्फ मकसद अल्लाह की रज़ा होती है, बैठे हैं कभी? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत सारे हलके आपको मिलते रहते हैं अगर आप वाकई इल्मी मजलिसों में आते जाते हैं। फरमाया, ऐसे वक्त में आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगाता है, यानी आवाज़ देने वाला कोई फरिश्ता, क्या कहता है कि तुम इस हाल में खड़े हो कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल गए हैं, तो नेकियों की महफिलों को ढूंढा करें, वहाँ आके बैठने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वही तवील हदीस, कुछ फरिश्ते घूमते हैं और फिर अल्लाह को जाके रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ कुछ बंदियाँ तेरी बैठी तेरा जिक्र कर रही थी, जन्नत मांग रही थी, जहन्नम से बच रही थी। तो अल्लाह कहता है, जाओ मैंने सबको माफ़ किया। तो फरिश्ते कहते हैं, ना ना ना, एक ऐसा था जिसकी कोई नियत नहीं थी, वो तो ऐसे ही किसी सहेली के साथ आ गई, आपकी ज़ुबान में सुना रही हूँ। वो नीज नहीं ऐसे ऐसी, उसकी तो नीयत भी कोई और थी। अल्लाह कहता है ये महफिल इतनी प्यारी है कि मैं इसकी वजह से उसको भी माफ़ कर दूंगा। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके सबब अल्लाह खताओं को माफ़ करते हैं, मिटा देते हैं, गुनाहों को दूर करते हैं। साहबा कैसे ना कहते, फौरन बोले जी जरूर बताइए। तो आपने फरमाया, नापसंदीदा हालात में वजू करना, अल वुदू इंदल मकारह, मकरू हालात यानी सर्दी बड़ी, -20 -10, मेकअप किया हुआ, कपड़े ऐसे हैं, बाजू नहीं ऊपर हो रहे, वहां जाकर वजू कीजिए, अल्लाह अलफ बनते हुए आपके साथ ये मामला करेगा। और जब मुश्किल हो रहा हो तो मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। अल इंतजार उबादस सलाती इला सलात, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इस नाम को पढ़ने के बाद ये भी सोच लीजिए कि हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स एहतसाब और ईमान के साथ रमजान के रोजे रखे, इसके पिछले सारे गुनाह माफ होते हैं। मन कामा ईमान व एहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। तो जो ईमान और एहतसाब के साथ लैलतुल कद्र में क्याम करेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ कर देंगे। अभी से नियत कीजिए इस साल बहुत अच्छा रमजान गुजारना है। फिर इस तरह आपने फरमाया कि सदका करना और आधी रात को नमाज पढ़ना गुनाहों को दूर करता है, और फरमाया हज गुज़श्ता गुनाहों को माफ करता है। हदीस अगर अरबी में कोट करती ना तो यहाँ लफ्ज़ आपको याफू नजर आता, मिटा देता है पिछले गुनाह जैसे किए ही नहीं। फिर इसी तरह आपने फरमाया हज या उमरे के तवाफ के मौके पर हजरे अस्वद और रुकने यानी का इस्तेलाम यानी इसको छूना गुनाहों को बिल्कुल मिटा देता है। खताएं गिर कर झड़ जाती हैं और इंसान साफ सुथरा हो जाता है, जैसे साबुन लगता है तो मैल चली जाती है ना। कितना प्यारा अल्लाह का ये नाम है। फिर इस तरह इब्ने उमर से एक रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे एक खादिम है, गलतियां भी करता है, हम उसको मारते भी हैं, आखिर उसको कितनी दफा माफ करूं, कितना को माफ करूं। आप खामोश रहे, एक बार फिर दो बार फिर तीसरी बार। तो आपने फरमाया, हर रोज 70 बार अपने मुलाजिम को माफ करो, उससे दरगुजर करो। चलिए जिनके घरों में मुलाजिम है उनके ऊपर रहम कीजिए। इसी तरह इब्ने उमर से एक शख्स ने पूछा कि तुमने सरगोशी के मुतालिक अल्लाह के नबी से किस तरह सुना है। उन्होंने बयान किया कि आपने फरमाया, तुम में से एक शख्स अपने रब के करीब होगा यहाँ तक कि वो अपना हाथ इस पर रख कर फरमाएगा, क्या तूने फुलां और फुलां बुरे काम किए थे। वो अरस करेगा, जी हाँ। क्या करे, वहां ना नहीं हो सकती, वहां तो सारे स्कैनर खुल के आ गए। कहेगा जी किए। फिर पूछा जाएगा, तूने फुलां फुलां और काम भी किए। वो कहेगा जी। इस तरह अल्लाह सारे गुनाहों का इकरार कराएंगे, फिर फरमाएंगे, मैंने दुनिया में इसके गुनाहों पर पर्दा डाला, मैं आज भी इसको बख्श देता हूँ, ये है अल गफूर। लेकिन जब अल अफूफ होता है तो कैसे, हदीस में आता है गुनाहों से तौबा करने वाला, पलट आने वाला, अपनी इसलाह कर लेने वाला। ये तीन चीज़ें लिख लें, तौबा, पलटना और इसलाह, और ये तीनों तरतीब आपको सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू में भी मिलती है। ऐसा हो जाता है गोया किसने गुनाह किया ही नहीं और अल्लाह ताला इसको मिटा कर साफ फरमा देता है। तौबा गुनाह करने वाले के दिल को चमकदार बना देती है। अल्लाह अकबर। जैसे बीमारी से सेहत मिले ना तो फिर और ही खूबसूरती होती है, क्योंकि वो खूब अच्छे अच्छे खाने और टॉनिक भी तो पिए होते हैं ना। और वो हदीस भी आप याद रखिए कि स्याह धब्बा पड़ता है गुनाह पे, फिर तौबा से फिर मिट भी जाता है और एक वक्त आता है कि बिल्कुल दिल साफ होता है, और तौबा ना करें तो सारे धब्बे पड़ते रहते हैं। इसी तरह आपने फरमाया, किसी मोमिन को कोई तकलीफ, कोई बीमारी, रंज पहुंचता है, हद तक एक कांटा भी चुभता है तो इसके गुनाहों का कफारा बना दिया जाता है। कभी आपके अपनी पिन नहीं चुभ जाए आपके हाथ में तो इस हदीस को याद कीजिए। फरमाया, मोमिन मर्द और औरत पर हमेशा आजमाइशें आती रहती हैं, कभी इसकी जात में, कभी औलाद में, कभी माल में। पिछला नाम याद करिए, अल-फत्ताह। बहाने बनाते हैं हमें गुनाहों से निकालने के, यहाँ तक कि जब अल्लाह से मुलाकात करता है तो गुनाहों से पाक होता है। तुम बीमारी को बुरा ना कहिए, इंजेक्शन लगता है बुरा ना कहिए, ड्रिप लगती है इट्स ओके, बस कहिए अल्लाह गुनाहों के कफारे बना दे। और फिर वो हदीस जिसमें आपको सुना दिया कि सदका माल को कम नहीं करता। बस दफा हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम कहते हैं लोग दबाएंगे, हमारे हक मारेंगे, सोचेंगे इनको नहीं आता। तवाज़ो इख्तियार कीजिए, आप देखेंगे जितनी तवाज़ो होगी अल्लाह आपका उतना इज्जत के साथ मुकाम बुलंद करेंगे। और फिर वो हदीस भी याद कीजिए कि आपने फरमाया, जिसके घर के दरवाजे पर नहर हो और 5 दफा दिन में वो उसमें वजू करे या गुसल करे तो जिस्म पर मैल रहेगा। कहा नहीं, कहा इसी तरह 5 नमाजें पढ़ने वालों के ऊपर गुनाह नहीं रहते। तो 5 वक्त के नमाजी बनिए, ये आपको इस नाम से अमल मिल रहा है। फिर इसी तरह आपने फरमाया, बास लोग भलाई की हालत में रात गुजारने वाले हैं और बास शर में लुथड़ कर सोते हैं। दुआ कीजिए रात को सोने से पहले गुनाह ना करें, क्योंकि नहीं पता कि आपकी आंख कब्र में खुलेगी या अपने ही बिस्तर पे खुलेगी। जो रातों में मर जाते हैं, दुआ करें अल्लाह में सोते में ना मरना इस तरह कि तौबा ना करें। हाँ तौबा करके जाएं तो फिर तो पता भी ना लगे जब भी जाएं, लेकिन अपने हिस्से के काम करके जाएं, अपनी अधूरी चीज़ों को पूरा करके जाएं। मुराद ये था कि जिक्र करके नहीं सोते, वो दिन भर के गुना अपने ऊपर ले के सोते हैं और बुराइयों में रहते हैं, ऐसे जैसे कोई गल्लास्तों में सो रहा हो। ऐसा करना खुद अपने ऊपर जुल्म है। अमल के नुक्ते खुद निकाल लिए, सब खुले हुए दिख रहे हैं। फिर एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस बंदे की दुनिया में पर्दापोशी की किसी को पता न लगने दिया, क्यामत के दिन भी उसको महफूज रखेंगे और पर्दापोशी करेंगे। और अल्लाह के नबी ने ये कहा था कि मेरी सारी उम्मत को माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुला करने वालों के। कहा वो क्या होता है? कहा एक शख्स रात को कोई गुनाह करे, इसको नोट करें, पार्टीज, डिनर्स, मेहंदियाँ, ओबटन, पहले तो छुप जाता था, अब तो स्नैपचैट लेके दुनिया को दिखाते हैं। फरमाया जो रात को गुनाह करे अल्लाह उसका गुनाह छुपा दे, क्योंकि वो माफ़ करता है, वो दरगुजर करता है ना, मगर सुबह होकर वो खुद ही लोगों को कहता है तुम्हें पता कल रात मैंने ये किया वो किया, अपने मुंह से बोलकर लोगों को बताने लगे रात गुजर गई थी, अल्लाह ने उसका गुनाह माफ कर दिया था, लेकिन उसने खुद अपना ऐब खोल दिया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। सारी चैट्स खत्म कर दीजिए, अपने सारे ऐसे सब शॉर्ट्स और क्लिप्स खत्म कीजिए जो कल गुनाहों की निशानियां बनकर रहेंगे। फिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी का अफ़ो दरगुज़र, अगर इसको हम सिर्फ एक टॉपिक के अंदर देख लीजिए तो अब्दुल्ला बिन उबई जैसा शख्स जिसने आपको जिस्मानी, रूहानी, कल्बी हर तरह की तकलीफ़ दी, हत्ता कि आपकी प्यारी बीवी के ऊपर तोहमत लगाई, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आ गया, मर गया, तो उसके बेटे जो बड़े अच्छे सहाबी थे अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना कुर्ता मुबारक दिया, नमाज जनाजा पढ़ा दी, उसकी कब्र में उतरे, लुआब तक लगाया, तो क्या बच गया? नहीं बचा, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं ना कि या अहलल किताब, बेशक तुम्हारे पास एक ऐसा पैगंबर आ गया जो तुम्हारे लिए और बहुत सारी बातों को खोल के बयान करता है और बहुत सारी चीज़ों से दरगुजर करता है। फिर आप देखिए आपके दरगुजर की मिसाल फतेह मक्का, जान के दुश्मनों को माफ़ किया और सबको छोड़ दिया। फिर इसी तरह एक यादगार वाक़या जिसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से माफ़ी का मामला बनता है। आप देखिए कि आसान नहीं होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चबाने वाली औरत हिंदा मुसलमान भी हो गई, अल्लाह के नबी ने माफ़ भी कर दिया, लेकिन कहा मेरे सामने ना आना, जब तुम मेरे सामने आती है तो मुझे अपना चचा याद आ जाता है। तो इतना हौसला कहाँ से लाएं? ये वहाँ से लाना पड़ेगा जहाँ से अजर लेना है। कहा करें कि अल्लाह मुझे माफ़ करने की तौफीक दे। जितना ज़्यादा आप इसकी कोशिश करते जाएंगे अल्लाह ताला आपको उतना ज़्यादा माफ़ करता जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आफियत मांगिए। अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को खुतबा दिया, फरमाया इस जगह गुज़श्ता साल रसूलुल्लाह खड़े थे और ये कह रहे थे, अभी बात पूरी नहीं की तो फूट फूट कर रो पड़े। फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह से दरगुजर और आफियत की दरख्वास्त किया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यकीन और ईमान के बाद आफियत से बढ़कर कोई नेमत किसी को नहीं दी गई, तो अल्लाह हमें भी दे। आखिर में फिर इस नाम से दुआएं क्या हैं? आप खुद देख रहे हैं कि जब माफ़ी है तो दुआएं भी बहुत सी होंगी और अज़कार। तो पहली दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, सुबह शाम की दुआओं में उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा भी है ये। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अल अफ्व वल आफियत फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, ये भी सुबह शाम की दुआओं में। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आफियत से ज़्यादा अच्छी कोई दुआ नहीं है जो अल्लाह ताला बंदे को कहता है कि मांगो। फिर इसके बाद देखिए मैयत के गुनाहों की माफ़ी की दुआ क्या है, उसमें क्या लफ्ज़ आता है? इस वक्त हम सभी भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारे करीब या दूर या आज या पहले जितने जा चुके उन सब को बख्श दे। अल्लाहुम अग़फिर लहू व रहमहू वाफ़ीही वाफ़ू अन्हु, ये है वो लफ्ज़, उनसे आफियत का मामला कर दे। पूरी दुआ आप पढ़ सकते हैं। फिर एक दुआ सूरत बकरा की आखिरी आयतों में 286, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो इसमें जो लफ्ज़ है ना वाफ़ु अन्ना, ये है अल्लाह से मुतल्लिक, और ये दुआ तो आप सब पढ़ते भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि गुनाहों की मुआफ़ी की एक अजीम दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ये वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को सिखाई थी कि आप मांगा करें कब, जब आपको लैलतुल कद्र नसीब हो जाए। बेटा नहीं कहा, बेटी नहीं कही, दौलत नहीं कही, माफ़ी कही, तो ये कितनी बड़ी दौलत होगी। ये हमारे फाफनी कोर्स में बड़ी डिटेल से हुआ था। अगर आप इस नाम को और भी इंजॉय करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर कभी दिल चाहेगा तो फाफनी 3 दिन का कोर्स था, सुन लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला का महबूब अमल क्या है कि बंदा उससे माफ़ी मांगे, फाफनी, ये कहा करे, फाफनी इन्नका फ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ुअन्नी, मुझे माफ़ कर दे। और जब मग़फ़रत और अफ़ का मतलब अब आपको आज पता लग गया तो फिर इसके बाद तो ये दुआ मांगनी और भी आसान है। और ये जो जुमला है ना आयत 286 के पहले, समय ना वाता ना गफरा न करबना व इलई कल मसीर, इनको हिर्ज़े जान बनाइए। उठते बैठते बोले, आपकी करवटों में पूछिए अपने साथ सोने वालों को कि वो आप क्या बोलती हैं, आप क्या मांगती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए सूरह आले इमरान की आयत 147 में भी दुआ है, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरीना व सब्बित अक़दामना व अंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन। हज़रत नूह की दुआ है जिसमें अल्लाह से यही मांगा, आयत 28 है सूरह नूह की, रब्बिग़फिर ली व ली वालिदैया। तो इससे अमल क्या निकलता है, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करें बख्शिश की और अपने लिए भी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक दुआ जो आपको ऊपर दी है उससे मुख्तलिफ थोड़ी सी और दुआ है जो मैयत की है, आप रोज़ दिन में एक बार अपने सारे प्यारों का तसव्वुर करके जहन में ये मग़फ़रत की दुआएं कर लिया करें। इसमें आप देखिए बंदा कितनी तड़प के साथ कहता है कि अल्लाह उस बंदे को माफ़ कर दे और उसके ऊपर अपना रहम फरमा दे, ओलों से, पानी से, बर्फ़ से उसको साफ़ कर दे। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला से ये मांगते जाएंगे उतना अल्लाह आपके लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा। और फिर अल मौइज़तुल हसना, अलफ के नाम से, हमने भी दूसरों की पर्दापोशी करनी है इंशाअल्लाह। दूसरों के गुनाहों को जाहिर नहीं करना, ना अपने ऐब खोलने ना दूसरों के खोलने। सवाल यह कि गुनाहों को कैसे मिटाऊं। देखिए ना इंक का धब्बा कैसे मिटता है, मुझे ना इरेजर याद आ रहा था आज सुबह से। कभी कभी ऐसा अच्छा इरेजर होता है कि पेंसिल का निशान ऐसे मिटता है कि लिखा ही नहीं, कुछ ऐसे होते हैं कि उससे और भी गंदा होता है। तो चंद तरीके देख लीजिए। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़िए, क्योंकि दोनों नमाजों के बीच के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मस्जिद की तरफ चल के जाइए और नमाज का इंतज़ार कीजिए, उतने वक्त में गुनाह माफ़ होते रहेंगे। जिक्र अस्कार कीजिए, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तस्बीहात पढ़िए, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर जिक्र की मजलिसों में शिरकत कीजिए। फिर इसी तरह जिंदगी के किसी भी किस्म के जो गुनाह हो इनके इवज़ किसी किस्म की नेकी कर लें। जुबान से गुनाह किए थे ना, अब जुबान से नेकियां कराएं। गिफ्तें की थी ना, अब इस्तगफार कीजिए, दूसरों की तारीफें कीजिए, उनको अच्छा करिए। इसी तरह फिर आंखें और कानों को नेकियों में डाल लें। फिर इस तरह जब कोई गलत काम याद आ जाए तो फौरन कोई ना कोई नेकी का काम कर ले। इदफा बिल्लत ही याक्सन, अल्लाह ताला ने कहा, और अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। फिर इसी तरह एक काम कीजिए, तौबा इस्तगफार करें, सदका खैरात दीजिए, नमाज पढ़िए। किसी के साथ ज्यादती की है तो उससे आप हुस्ने सलूक कीजिए, उसका कफारा हो जाएगा। और चूंकि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते तो हमें भी दूसरों पर जुल्म नहीं करना। और नमाजों के जरिए अपने गुनाहों की आग को ठंडा कीजिए। अल्लाह के नबी नमाज के वक्त में ऐलान करवाते थे और वो कहता कि आदम के बेटो उठो और बुझा दो आग को जो तुमने अपने नफ्सों के लिए जलाई है। आज भी हय्या अलैस्सलाह और हय्या अलल्फलाह की आवाज़ें आती हैं लेकिन हम मसरूफ होते हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़ इससे सीखी कि आजमाइशें हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती हैं, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। दुआ करा करें कि अल्लाह अगर कोई आजमाइश आ जाए तो उसमें साबित कदम रखना। कोई बीमारी आ जाए, आज के बाद लिखिए मैंने अपनी बीमारी किसी को नहीं बतानी। डॉक्टर भी खुद पूछेगी, आपने नहीं बतानी, क्योंकि बीमारियां गुनाहों को मिटाने का जरिया है। फिर इसी तरह अल्लाह कोई आजमाइश भेजे ताकि आपका दिल नरम हो, तो हर आजमाइश के बाद अपने दिल में नरमी पैदा कीजिए, अल्लाह की तरफ और रग़बत कीजिए। शिकवा न कीजिए, शुक्र कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, गुनाहों से पाक हो जाएंगे। और याद रखिए बेचैन बंदा जब अपने रब को पुकारता है, वाइज़ा साला कई बात यन्नी फ़ैन्नी करीब, तो फिर अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ करता है। कहा करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ुअन्नी, या रब्बी उफ़ुअन्नी उफ़ुअन्नी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर तकवा इख्तियार करें, उससे भी आसानी हो जाती है और अफ़्व दरगुज़र आपकी मुसीबतों के वक्त में आपके लिए एक ढाल बन जाएगा। और आखिरी जुमले क्या है कि माजी की गलतियों पे अफसोस कीजिए लेकिन डिप्रेशन में ना जाइए, उसको नेकियों में बदलिए। इतनी नेकियां करें कि आप इतने नेक मारूफ हो जाएं कि लोगों को आपके माजी के गुनाह याद भी ना रहे। मायूसियों के चुंगल से खुद भी निकलिए, दूसरों को निकालिए, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही जैसे एक बंदा गिर गया तो आप उसको छोड़ देंगे उधर ही? उसको दूसरों का हाथ चाहिए होता है। तो जाहिर गुनाहगार दिखने वाले लोगों को पकड़िए, उनको अल्लाह से जोड़िए किसी भी तरह, फिर नहीं उनके नसीब में होगा तो फिर अल्लाह उनको दे दे, लेकिन आप सुरखरू हो जाएंगे। और फिर ऐसे लोगों को इस्लाम के करीब लाइए, शायद आपके कहने से कोई इस्लाम कबूल कर ले और अल्लाह ताला आपको फिर उसमें उसकी मदद दे। और एक बात, जो जिंदगी एक बार मिली है जिसमें अमल करना है, बाद वाली तो या जजा है या सजा है। तो ये 4 दिन की दुनिया बनाते हुए आखिरत को ना बिगाड़िए, अल्लाह की सिफत को अपने अंदर महसूस कीजिए। और इसी तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात की नीयत कीजिए कि मेरे मालिक तू मुझे अब आइंदा गुनाहों से नफरत दे दे। ये दुआ मांगेंगे ना, यकीन करें आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। जो चीज़ ना खाए ना, वो खाने को भी नहीं फिर दिल करता। तो हमने गुनाहों के चस्के ज़ुबान को लगा लिए, जिसका नुकसान जो होता है वो हम सब देखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से अफ़्वो दरगुज़र का मामला फरमाए और क़्यामत के दिन हमें रुसवा ना करे, हशर के दिन नशर ना करे। और ख़ास तौर पे फिर आज एक नीयत करके उठिए यहाँ से, आपके साथ किसी ने बुरा किया, दिल तोड़ा, तकलीफ़ दी, आप अपने दिल में एक छोटा सा कब्रिस्तान बनाइए और उसमें लोगों की तकलीफ़ों को दफन कीजिए। आप उन तकलीफ़ों का 30वां, 40वां, 10वां ना मनाइए कि यार थोड़े दिन बाद पिटारा खोल कर बैठ जाएं, फलाने ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा, वो मेरी ये आदत नहीं करने आया, वो मैं जब आई थी तो उसी दिन सासू अम्मा ने ये कह दिया था, फलाने ने मेरे खिलाफ ये कहा। ये बातें दिल के कब्रिस्तान में इस तरह दफन कर दें कि दोबारा याद भी ना आए। और माफ़ करने को आदत और अखलाक का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।